وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا نمبر 12. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارما پارا توبہ اور استغفار کی دعوت دینے والا پارا ہے. پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے رازق حقیقی ہونے کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں رزق دے گا, تو پھر ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے ہیں. حلال اور حرام کا فرق آنے لگتا ہے اور زندگی کی دوڑ کا مقصد صرف رزق کمانا نہیں ہو جاتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ جب خیر آتی ہے تو اللہ سے دور ہونے لگتا ہے, اور جب خیر شر میں بدلتی ہے یعنی خوشی غم میں بدلتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. لیکن جو لوگ صبر کر کے عمل صالح کر لیں وہ اس عادت سے بچے ہوئے ہیں. مجھے آپ کو اپنے ایمان کا اگر لیول چیک کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ خوشی اور غم میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر آیت 15 میں دنیا کی زندگی کو چاہنے والوں کی بات کی گئی کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو دے دیا جائے گا, لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سوچیے ذرا, کیا میں صرف دنیا کے لیے جی رہی ہوں؟ دیکھیے دنیا کمانی ہے لیکن صرف دنیا نہیں, دنیا کا غم کرنا ہے لیکن صرف دنیا کا غم نہیں. لیکن آج عمل سے دکھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سب سے بڑا غم اور ہم دنیا بن چکی. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی برائی بیان کی گئی کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستوں سے بھی روکتے ہیں, دین کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ اللہ کے دین سے لوگ دور ہونے لگے. ایسے لوگ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. میرا آپ کا عمل یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے یہ چیک کریں کہ کیا میں دوسروں کو دین کی دعوت دے رہی ہوں یا ان کو دین سے دور کر رہی ہوں, کیا میں دین کا خوبصورت نمونہ بنتی ہوں یا دین کا برا نمونہ بنتی ہوں. اس کے بعد اخبات کی بات ہے, آیت نمبر 24 میں اخبتو الی ربہم. حقیقت یہ کہ اخبات ایمان کا خلاصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے آمنو پھر عملوا الصالحات پھر اخبتو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں. پہلے درجے پہ اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر عمل صالح کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان اندر سے جھک جاتا ہے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. پھر واقعی اس کو اللہ کی ہر بات ایسے لگتی ہے کہ وہ اسی سے کہی گئی. اس کے بعد قوموں کے تذکروں میں دوبارہ یہ بات بتا دی کہ جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ آ جائے اس کو ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا. دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. انبیاء کرام کی دعوت بے لوس ہوتی تھی, بغیر کسی اجر کی امید کے وہ یہ کام کرتے تھے. اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کو اپنی خواہشوں پہ پابندی لگتی ہوئی دکھتی ہے. پھر اسی طرح سے نوح کو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جھگڑنے والے نہیں ہوتے تھے. لیکن ہوتا ہے ایسے ہی کہ خواہش پرست لوگوں کو جب دین کی بات اپنی خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہوئی دکھے تو وہ اس بات کو جھگڑے کا نام دے دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کشتی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا. آج بھی اگر میری آپ کی زندگی کی کشتی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی تو بڑے سے بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. پھر کشتی میں سوار ہونے کی دعا سکھائی گئی آیت 41 میں, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس دعا کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور یاد بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود اللہ کا حکم مانتی ہے. جو ہی کہا کہ یار دبلئی ماں کی, क्या जमीन अपने पानी को निगल जा, पर तो जमीन ने पानी को निगल दिया। इसी तरह आसमान को कहा गया कि रुक जा, तो बारिश रुक गई। इससे पता चलता है कि जमीन और आसमान जो हमसे बहुत बड़े हैं, जब वो अल्लाह ताला की बात मानते हैं तो मुझे आपको तो इससे बहुत ज़्यादा मानने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल भी दी, समझ भी दी और एक ही वक्त में बहुत सारी नेमतें दी। ये अलग बात है कि हमें इख्तियार दे दिया, अपनी मर्जी करो, और इन चीज़ों को इख्तियार नहीं दिया। इसी ज़मन में हज़रत नूह और उनके बेटे का मामला बड़ा दिलसोज है। बेटा है नूह का, लेकिन बुरी सोहबत ने उसको कुफर पे माइल कर दिया, और बेटे की नज़रें हैं ज़ाहरी असबाब पे। उसको लगता है कि बड़े पहाड़ पे चढ़ के जान बचाऊंगा, क्योंकि बाप की कश्ती तो टूटी हुई है। लेकिन बेटे को ये नहीं पता चला कि तवक्कुल के भरोसे पे, अल्लाह की वही में बनी हुई कश्तियाँ चाहे कमज़ोर क्यों ना हो, वो बच जाती हैं और बाकी चीज़ें डूबती हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं दीन पे अमल करेंगे तो कैसे बचेंगे, तो यह एक बहुत बड़ी दलील है। देखा जाए तो अकल में बात नहीं आती कि ये कश्ती कैसे बच गई। आज भी वो लोग पुरसकून हैं, इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह की वही के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं। और ये भी पता चला कि अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। 950 साल की तबलीग के बावजूद नूह की दुआ रद्द कर दी गई। आज हम कहते हैं नेक लोगों की अल्लाह मोड़ता नहीं है और हमारी सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चाहे तो नेक की रिजेक्ट कर दे और चाहे तो शैतान तक को मोहलत दे दे, मुझे आपको अपने काम की फ़िक्र करनी है। और यहाँ से शिर्क की कबाहत भी देख लीजिए कि जब अमल अच्छा ना हो तो माँ बाप की नेकियाँ भी औलाद के काम नहीं आएंगी। फिर इसके बाद अगली कौमों के तस्करों में इस्तग़फ़ार के फ़वाद बयान किए गए। आयत 52 में आसमान से बारिशों का बरसना, कुव्वतों का बढ़ना, और इसी तरह से आगे हम अगली सूरतों में पढ़ेंगे औलाद और माल का मिलना। तो हकीकत है कि इंसान के गुनाह उसके रास्ते की रुकावट होते हैं। आज हम भी अगर तंगी तुरशी का शिकार हैं तो हमें कसरत से शऊर के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल दे। फिर इसके बाद कौम आद के नाते से एक बात बताई गई। जब अल्लाह के नबी अल्लाह की बात बताते थे और लोग उसके मुकाबले में अकड़ने लगते थे, तो ऐसे लोगों को दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दिया जाता है। आज भी ऐसे ही हो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न लगी हो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। किस तरह से बुढ़ापे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिलती है औलाद की, और बशरी तकाजे से बीवी को हंसी आ गई कि कैसे हो सकता है बुढ़ापे में औलाद हो। लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर, इस बात का सबूत है कि अल्लाह वाकई बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है। और असल बात यह है कि अल्लाह ताला जो चाहे करे, उसकी हिकमतों को मैं और आप नहीं जानते। कौम लूत का मसला होमोसेक्सुअलिटी थी। कैसे उनके सर पे नशा तारी था गुनाहों का, कि बुरे भले की तमीज़ ख़त्म किए बगैर जाते हैं। आज भी आने वाली नस्लों पर सबसे बड़ा फितना यही है। हर दौर का एक फितना होता है। पिछले दौर में कहीं शिर्क था और कहीं कुछ और, लेकिन आज का फितना बेहयाई का है। जिस तेज़ी से घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं, लिबास हिजाब की पाबंदियाँ हटती जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, और कहीं एड्स के नाम पर और कहीं दूसरी चीज़ों पर। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। कौम मदीन के नाते से हमें नाप तोल में कमी से बचाया गया और बताया गया कि देखो, दूसरों से वही सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। तुम्हारे बाँट फ़र्क नहीं होने चाहिए कि लोग तो तुम्हारे साथ इस तरह का मामला करें, लेकिन तुम उनके साथ दूसरी तरह का मामला करो। फिर इसके बाद ये बता दी, हलाल के साथ थोड़ी सी बचत भी ज़्यादा बरकत वाली होती है बहुत कसीर कमाई नाफरमानी के साथ लेने की। और इसकी दलील बहुत सारे लोग देते हैं कि वाकई रिस्क तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं है। ये जब से रिस्क आ गया उस वक़्त से बीमारियां आ गईं, परेशानियां आएं, एक बीमारी ख़त्म, दूसरी ख़त्म, दूसरी शुरू, कभी एक बच्चा बीमार, कभी वो परेशानी, कभी शौहर बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए गिले हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ इस दुनिया में खुशी मिल ही नहीं सकती। फिर इसके बाद हज़रत मूसा और फिरौन का किस्सा शुरू होता है और बता दिया जाता है कि हर लीडर ठीक तरफ नहीं लेके जा रहा होता। फिरौन का पीछा करने वाले उसके साथ डूब गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मुझे आपको भी आंखें खोलकर किसी की भी पैरवी करनी चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला की सुन्नत आयत 102 में कि जब अल्लाह किसी बस्ती को पकड़ता है तो बड़ी शिद्दत से पकड़ता है। और हकीकत है कि अल्लाह ताला बहुत तहम्मुल के साथ दुनिया में लोगों को गलत काम करने का मौका देते हैं। जब उनकी मोहलत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला पकड़ते हैं और उसके बाद जहन्नुम की कुछ झलकियाँ, जिसको सुनकर यही कह सकता है इंसान के ऐ अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना। आयत 112 के बारे में कहा जाता है कि ये है वो सूरत जिसने अल्लाह के नबी को बूढ़ा कर दिया था। फस्तकीम कमा उमिर तब मन तब माँ कमा ला ततगो, आप उस काम पे लगे रहिए जिसका आपको हुक्म दिया गया और तरकशी न करें। हकीकत है कि एक सच्चे दाई दीन को, और जबकि वो नबी हो, इस बात का बड़ा गम होता है कि क्या मैं लोगों को सही पैगाम दे रहा हूँ, कहीं मैं अपने नफ्स से कोई बातें तो नहीं कर रहा, पैगाम को डाइल्यूट तो नहीं कर रहा, कमी बेशी तो नहीं हो रही। तो हम सबको भी अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह की बात लोगों तक वैसे ही पहुँचाएँ जैसी कि अल्लाह ताला ने कही, ना शिद्दत बरतें और ना नरमी बरतें। जिस तरह से चीज़ है उसको उसी दर्जे पे पेश कर दिया जाए। फिर उसके बाद नमाजों के इशारे करके सब्र की दावत दी गई और बता दिया कि जिन लोगों को दुनिया में माल मिले लेकिन उस माल के साथ वो ऐश परस्त हो जाएं, तो ऐसे लोग मुजरिम हैं। माल हर एक के लिए बुरा नहीं होता। असल में जो लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते वही इस माल की वजह से कल क़यामत के दिन परेशान होंगे। और सूरत हूद बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ पूरी होती है कि जब कभी दूसरों की बातें आपका दिल दुखाएं तो आप अल्लाह से मदद मांग लें, और तवक्कुल के लिए तो अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। इसके बाद सूरत यूसुफ है जो यूनिक सूरत है, खूबसूरत सूरत है, अंदाज़ कहानी का है लेकिन अमल बहुत सारे हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि बेकार कहानियाँ और मशगले और फिल्में ड्रामे देखने की बजाय कुरान और हदीस की सच्ची कहानियाँ बच्चों से भी शेयर करनी चाहिए और अपना वक्त बीनी पे लगाना चाहिए। फिर दूसरी बात ख्वाबों की हकीकत, के ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं जो खुशखबरी हैं, एक शैतान की तरफ से होते हैं जो इंसान को मायूस करते हैं, और तीसरे इंसान के अपने नफ्स की बातें होती हैं, अधूरे मनसूबे, दिन भर की मसरूफियात बस दफ़ा ख्वाबों में आने लगती हैं। तो बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए ख्वाबों को। मेरे आपके ख्वाब मैं आप नहीं समझ सकते, बस वही किताबें कर लीजिए हर बात को। और अगर बुरा ख्वाब देखें तो हदीस में एक नफिल पढ़ लीजिए, साइड पलट दें, सदका दे दें और किसी से उसका जिक्र ना करें, क्योंकि जब ख्वाब को बयान कर दिया जाए तो वो हो जाता है, और अगर ताबीर बता दी गई कुछ भी तो वो भी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के नाते बाप बच्चों के ताल्लुक पे बड़ी खूबसूरत रहनुमाई है कि जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, बच्चे अपने जागते के ख्वाब भी और नींद के ख्वाब भी माँ बाप से शेयर कर सकें। इस हद तक बेतकल्फी भी नहीं होनी चाहिए कि वो डरे भी ना, और इतना फासला भी ना होना चाहिए कि बच्चों बाप को और माँ को देकर दुबक जाएं और दोस्तों से और सहेलियों से छुप छुप कर बातें करें। फिर इसके बाद हसद की कबाहत, किस तरह हज़रत यूसुफ के भाई शैतान के हाथों में आ गए कि बाप की मोहब्बत लेने के लिए उन्हीं की मोहब्बत को उनकी आंखों से दूर कर दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या आप किसी की मोहब्बत छीने ताकि वो आपसे मोहब्बत करे। और ये भी पता चलता है कि भाइयों ने जो भी चाहा लेकिन अल्लाह ने यूसुफ के साथ बहुत अच्छा मामला किया, और हज़रत यूसुफ का सब्र और शुक्र और रज़ी तो बिल्लाही रब्बन यानी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना भी दिखता है। पूरी सूरत हज़रत यूसुफ के मुहसिन होने को साबित करती है। हकीकत है जिस वक्त हम शिकवे करते हैं और दूसरों की ज़्यादतियों के चर्चे करते हैं और रो रो के हम दूसरों के अंदर सच्चे बनते हैं, अगर उस वक्त हम 2 नफिल पढ़ लें, रो धो लें, तो अल्लाह हमारे दिल को भी हल्का कर देगा। और फिर इसमें यह भी पता चला कि औलाद की बड़ी बड़ी नासमझियों के बावजूद माँ बाप को अपनी औलाद को खुद से दूर नहीं करना चाहिए, उनकी इसलाह की कोशिश करते रहना चाहिए। और झूठ के पाँव नहीं होते, कमीज पे खून तो लगाया लेकिन फाड़ना भूल गए। लेकिन हज़रत याकूब सब समझने के बावजूद कहते हैं फसबरुन जमील। इसमें माँ बाप के लिए भी एक रहनुमाई है कि माँ बच्चे हत्ता कि इतना बड़ा जुर्म करके आए लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उनकी इसलाह की खातिर उनके साथ रहे। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में भी बहुत सबक है। इतने कीमती यूसुफ चंद दिरहमों के इवज बिक गए। होता भी ऐसे ही है ज़िंदगी में, बाज़ लोग आपकी कदर नहीं करते, बहुत लाडली अच्छी बच्चियाँ होती हैं, ससुराल में जाकर बिल्कुल बेकदर हो जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला इंसान की सच्चाई को खोल देता है। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ का हुसन उनके लिए आजमाइश बन गया, और औरत ने उनके साथ जो कदम उठाया उसकी वजह हज़रत यूसुफ का हुसन था। तो जो नेमत मिलती है ना वो आजमाइश भी होती है, उसके लिए इंसान को ख्याल करना चाहिए कि क्या मेरी खूबसूरती मेरे लिए फितना तो नहीं बन रही। फिर इसके बाद देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने वाली औरत, शौहर को देखते ही वो औरत अपनी बात बदल लेती है। हकीकत है कि नफ्स परस्ती पर मबनी मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं। फिर देखिए, हज़रत यूसुफ़ को किस चीज़ ने रोका उस औरत की दावत को कबूल करने से। बाप की तरबियत। इतने साल से बाप से जुदा है, लेकिन बचपन की तरबियत का असर होता है। तो अमल की बात है कि बच्चों को हमेशा बचपन से ही अच्छी बुरी बात का फ़र्क समझाते रहें। क्या पता कब हम उनके रास्ते से हट जाएं, तो क्या उनकी इसलाह नहीं करेंगे? तो बच्चों के बिगड़ने का या जवान होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें अल्लाह का खौफ दे दीजिए कि तन्हाई में इतने उजर मौजूद होने के बावजूद हज़रत यूसुफ़ बच गए। देखिए, अकेले थे, जवान थे, अनमेरिड थे, परदेस में थे, वेस्टर्न कंट्री में थे, पहल औरत कर रही थी, इसके बावजूद तकवा था जिसने यूसुफ़ को बचाया। आज हमारे नौजवान भी इसी तकवा की बुनियाद पे ही बचेंगे। आज मैं और आप दीवारें नहीं खड़ी कर सकते, इनके दिल दिमाग की ऐसी खूबसूरत तरबियत कर दीजिए कि ये गुनाह की तरफ देखने को अपने लिए जहन्नुम में जाना समझने लगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित कर दी, ये भी हक पे होने की एक दलील होती है। और फिर इसके बाद देखिए कि अजीज़ मिस्र की बीवी और उनकी दोस्तें जो थी, उनका अमल बता रहा है कि उस दौर में औरतों को बहुत आज़ादी थी और मर्द बेचारे मस्कीन बने बैठे थे। आज भी कुछ हालात इसी किस्म के हैं, जहाँ भी औरत अपना हक लेने के लिए उठी, उसने अपने हक से ज़्यादा ले लिया और मर्द का हक छोड़ दिया। फिर इसके बाद देखिए, इतनी रौनक, खुशबुएं, महफिलों को छोड़कर यूसुफ जेल में जाने को पसंद करते हैं। हकीकत है कि ईमान वाला अपने ईमान को बचाने के लिए अगर तन्हाई में बैठ जाए, ये ज़्यादा बेहतर है हर महफिल और हर पार्टी और हर जगह की जीनत बनने से। फिर उसके बाद जेल में हज़रत यूसुफ़ का किरदार क्या दिखाता है कि इंसान में जब खूबी होती है ना, तो चाहे लोग उसको जेल में भी डाल दें, उसकी खूबी खुल जाती है। फिर इन्होंने किस खूबसूरत तरीके से उनको तबलीग की, खाने के इंतज़ार के दौरान ही उनको थोड़ी सी मुख्तसर सी बात की तौहीद पे, और बात भी अल्लाह के नाम से शुरू की। फिर अपने अमल की बात की कि मैंने छोड़ दिया गलत लोगों का तरीका, तो अल्लाह ने मुझे हिकमत दी। और इस तरह करते करते ना सिर्फ ये कि उसके ख्वाब की ताबीर बताई, को ये जिक्र कर दिया कि बादशाह से जिक्र करना, लेकिन शैतान ने बुला दिया। और दोबारा जब बादशाह के ख्वाब के लिए वही शख्स जेल में आया ताबीर पूछने, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस पे गुस्सा नहीं किया कि तुम तो मुझे भूल गए। हकीकत ये कि जो लोग मोहसिन होते हैं ना, वो कभी इस चीज़ को वजह नहीं बनाते कि तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे प्यार सलाम नहीं किया, तुम तो मेरी कदर नहीं करती। नहीं, आप देने वाले बनते जाइए, बस इस बात का गम करें कि लोग आपसे ले लें। बस एक दाई दीन और एक उस्ताद भी इससे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए लोगों से। बस ये कहे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम ले क्यों नहीं रहे? और फिर पारे कैंड पे किस खूबसूरत तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई कि उस औरत ने भरी महफिल में इकरार किया कि वाकई कसूर मेरा ही था, यूसुफ सच्चों में से थे। तो बात यह है कि सच को आँच नहीं है, जब आप हक पे होते हैं तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं। पूरे पारे के अंदर से बातें जो अमल की मिली, पहली बात यह है कि हमें झूठ से बचना है, बद अखलाकी से बचना है, कुरान के बारे में शक नहीं करना, बड़ी बड़ी नेकियां भी कर लें तो अल्लाह से डरते रहें, और नेक अमाल करने हैं तो भूलना नहीं है बल्कि आजिज़ी इख्तियार करनी है, नमाज़ों की हिफाजत करनी है, और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करते हुए अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह आज फितनों के इस दौर में हमें और हमारी औलादों को शैतान के शर से महफूज रखना। और इस पूरे पारे में आयात तो बहुत सारी खूबसूरत थी, लेकिन इस पारे पे अगर आप गौर करना चाहें तो सबसे खूबसूरत आयत जो मेरा आपका अमल बदल सकती है, वो कौन सी है? जिसमें हज़रत नूह और उनके बेटे का मुकालमा है। ये पूरे का पूरा वाक्या हमें इस बात की खबर देता है कि हमें अपने अमल की फ़िक्र करनी है और मादा परस्ती से बचना है। अल्लाह ताला मेरी आपकी मदद फरमाए। जी, पारा नंबर 12 की आयत तदब्बुर है, सूरत हूद आयत नंबर 40 और उससे अगली चंद आयत। हज़रत नूह और उनके बेटे का मुकालमा है। खुलासा इस सब का ये है कि हज़रत नूह ने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन बेटे ने माली मादी असबाब पे तवक्कुल किया और बाप की नज़रों के सामने डूब गया। आपने इस पूरे वाक़े को पढ़कर जिस बात पे गौर करना है कि 950 साल की तबलीग के बाद भी हज़रत नूह अपनी बात नहीं मनवा सके, तो मैं आप बहुत थोड़े दिन की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अल्लाह के दीन का काम करके उससे क्या मनवा सकते हैं? और जिस तरह आपका बेटा डूबता है, आज भी उम्मत मुस्लिमा की नस्लें डूब रही हैं। वो ईमान वाली कश्तियों को कमज़ोर समझती हैं और कुफर के सहारों को ज़्यादा अहमियत देती हैं। अल्लाह ताला हम सब को बचाए उन गलत चीज़ों से جس میں آج امت پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائے. پورے واقعے پہ غور کریں گے تو بہت کچھ آپ کو خیر کا ملے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.